व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी।
व्यक्त से जाओ भले अव्यक्त में तो आओगी।
ओम शांति। मुझे पता लगा है कि मधुबन अपने प्यारे घर में बाबा के अति लाडले युगल मूरत बच्चे इकट्ठे हुए हैं और लगभग शायद 18,000 बताएं। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई है। सबने आपकी महिमा तो खूब गाई होगी भट्टी के दौरान, और मैं भी अवश्य बाबा के वे महावाक्य याद कर रही हूं कि ये मेरे सैंपल बच्चे हैं। सृष्टि का जो अधिनियम है वह है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग नहीं है। हम बहनों को देख करके लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे कि शायद इतना त्याग करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को देखकर लोग प्रोत्साहित होते हैं, उत्साहित होते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मुझे वे दिन याद आते हैं अपने बचपन के। आयु बहुत छोटी सी थी, 8.5 वर्ष की आयु में बाबा के बन गए। माता पिता के द्वारा परिचय मिला था, वो सारी कहानी नहीं बताती हूं, लेकिन वह वाक्य उन दिनों अभी सेवाएं शुरू हुई थी, और सेवाएं जब शुरू हुई थी अभी ट्रायल एरर कई प्रकार की चलती थी, तो घर गृहस्थ में रहने वाले भी वाइट ड्रेस, फुल स्लीव्स ये सब पहनते थे। तो फिर बाबा ने परिवर्तन कराया। उन दिनों माताओं ने अपनी ज्वेलरी वगैरह सब उतार दी, बिंदी वगैरह सब उतार दी, और जैसे हम बहनें रहती हैं ऐसे रहना शुरू किया, लेकिन ये समाज में स्वीकार नहीं हुआ और लोग कुछ कुछ अलग अलग प्रकार की बातें करते थे। बाबा ने फिर एक एल्बम तैयार कराया। इस बात का आपको पता है या नहीं, कई बार बाबा मुरलियों में इसको मेंशन तो करते हैं, लेकिन जिनको इसकी बैकग्राउंड का पता है वही उसको कैच कर पाता है। बाबा ने अच्छे अच्छे प्रवृत्ति में रहने वाले युगलों के फोटो खिंचाए, उनके लौकिक रूप के यानी कलर ड्रेस, और उसको बाबा ने प्रदर्शनी में रखाया। प्रदर्शनियां होती थी ना, तो प्रदर्शनियों में वो एल्बम बाबा जरूर रखाते थे, जिसको देखकर कई घर गृहस्थ वाले प्रेरित होते थे कि अगर ये लोग चल सकते हैं तो हम भी तो चल सकते हैं। तो आप सब मीठे प्यारे बाबा की पढ़ाई के प्रत्यक्ष प्रमाण, सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हो, समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हो, हो ना, हो ना, है ना। दूसरी बात, बाबा की एक मुरली आई थी जिसमें बाबा ने कहा कि मैं जैसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में जो माल तैयार होता है उसको सैंपल रूप में शोकेस में रखा जाता है, और शो केस से फिर आगे सेल होती है। तो आप सब बाबा के लाडले बच्चे बाबा के शो केस में सुसज्जित हो। तीसरी बात, बाबा असंभव से संभव करने वाला है। जिसको साधु संत महात्माओं ने कहा असंभव, आग और कपूर इकट्ठे नहीं रह सकते, बाबा ने आप बच्चों के माध्यम से उसे साकार करके दिखाया है। आज की दुनिया में, कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में, और ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो पवित्रता के व्रत का पालन करके सारी नव सृष्टि को पवित्रता की फाउंडेशन पर खड़ा करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया इस बात को नहीं जानती, लेकिन बड़े बड़े साधु संत महात्माएं इस बात के आगे झुक जाते हैं। अगर महामंडलेश्वरों को, बड़े बड़े महात्माओं को झुकाने की बात है, तो इस बल पर है कि हम घर गृहस्थ में रह करके अपने आप को ऐसा पावन बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब शीघ्र आपके आगे लाइन लग जाएगी। तैयार है ना आप सब? आज मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाती हूं कि प्योरिटी की डेप्थ क्या है, उसमें नहीं जाती हूं, लेकिन आपकी महिमा। चौथी बात, आज के युग में, इतनी कांटों की दुनिया में, इतने प्रकार के प्रहारों के बीच स्वयं को कमल पुष्प समान रहकर गृहस्थ को आश्रम बनाना, ये आपने साकार करके दिखाया। दुनिया ने गृहस्थ रखे शहरों में और आश्रम बनाए हरिद्वार ऋषिकेश में, आपने क्या किया? गृहस्थ को ही आश्रम बना दिया, ऐसा है ना? फिर एक बात और है, आप सब बाबा के यज्ञ के इतने स्नेही हो, अगर हम उसकी गहराई में जाते हैं तो आंखें गीली हो जाती हैं। हम भी परिवार से ही रहे हैं, माता पिता को देखा है, आपको भी ये अनुभव होगा। आप सबका प्यार बाबा के साथ कितना है, बताओ तो सही, कितना है बाबा के साथ प्यार? कोई नहीं बोल रहा है ही नहीं शायद, हाँ? कितना? पूरा ब्रह्मांड जितना प्यार है उसका एक प्रमाण है। मुझे अच्छी तरह पता है, बाबा के बच्चे केंद्रों पर आते हैं, अगर अपना बच्चा, लौकिक बच्चा कहता है मुझे ये चीज चाहिए और आपके बजट में वो फिट नहीं हो रही है, आप बच्चे को प्यार से क्या समझाते हो? अगले महीने लेंगे। पेट पर पट्टी बांध करके भी आप अपना भाग्य बाबा के घर में जमा करते हो, ये एक विशेष बात है। लौकिक बच्चे की आश को, उसकी चाहना को भी किनारे करके बाबा को वारिस जिसने बनाया हुआ है, बाबा बच्चे का इतना ध्यान रखते हो, उसके लिए आप सब पदम गुणा मुबारक के पात्र हो। बाबा ने ट्रस्टीशिप आपके माध्यम से सिखाई है और वंडरफुल बात यह है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी 2500 वर्ष तक थी, लेकिन हमारे प्यारे भाइयों ने जिस दिन से सुना कि नारी स्वर्ग का द्वार है, उनका एटीट्यूड माता गुरु का हो गया। कितना परिवर्तन आपने बाबा को सहयोग देने के लिए किया, विशेष भाइयों के लिए जो अपनी अहम, अपनी कुशाग्र बुद्धि, अपनी योग्यताएं उसके अभिमान में होते हैं, लेकिन बाबा ने आप दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाकर होलिस्टिक फैमिली का सैंपल तैयार किया है। ऐसा परिवार जहां आपने कहा और आपके साथी ने माना, ये ज्ञान के आधार से ही हो सकता है। और जो दुनिया में इतनी कठिनाई है, लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां घर बार छुड़ाती हैं, और ये संसार क्या बता रहा है, ब्रह्मा कुमारियां घर बार बसाती हैं, बनाती हैं, तोड़ती नहीं है, जोड़ती हैं। मैं पूछना चाहूंगी, क्या इस क्लास में ऐसे कोई हैं युगल जिनकी पहले खट्टी मीठी बातें थीं, थोड़ी दूरी थी आपस में, लेकिन बाबा का बनने के बाद आप एक हो गए, हैं ऐसे युगल? अच्छा, हाथ, अरे वाह, बहुत सारे हैं। ये चीज है कि बाबा तोड़ता नहीं है, ज्ञान से समझ मिलती है और हम जुड़ते हैं। अब बाबा ने घर गृहस्थ में रहने के लिए आप सबको कौन से फॉर्मूला दिए, नंबर वन बैलेंस। घर गृहस्थ में रहते हो तो बैलेंस बना कर रखो। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। दूसरा, ट्रस्टीशिप। तीसरा, बाबा ने आपको यज्ञ रक्षक की जिम्मेवारी दी है। आप बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं, यह आपका कर्तव्य भी है और जिम्मेवारी भी है। चौथा, डिटैचमेंट। निसंदेह युगलों का आपस में बहुत प्यार होता है, होना भी चाहिए, नहीं तो घर में कैसे इकट्ठे रहेंगे, होना भी चाहिए, परंतु मोह नहीं चाहिए। मोह दुख देता है। हमें रहना है लेकिन डिटैच होकर के रहना है, समझ रहे हैं ना? आप सब ज्ञानी तो आत्माएं हो, हम एक जन्म के, इसी जन्म के साथी हैं ना। पिछले जन्म में क्या हम युगल मूरत थे? नहीं थे। अगले जन्म में होंगे? नहीं होंगे। केवल इस एक जन्म में अपने हिसाब किताब, अकाउंट्स हम चुकतू कर रहे हैं। उसे खुशी खुशी चुकतू करना है, प्रेम से चुकतू करना है, ज्ञान सहित चुकतू करना है, परंतु ये नहीं कि हमारी अटैचमेंट हो। अटैचमेंट निश्चय दुख देती है। मैं आपको मिसाल बताती हूं। अच्छे ज्ञानी तो आत्मा युगल, मैं तो दिल्ली को ही जानती हूं। अच्छे ज्ञानी तो आत्मा, जिस समय वे इस शरीर में थे तो जो बहन थी वो हमेशा अपने युगल को टॉन्ट आदि मारती रहती थी। जब उस भाई ने शरीर छोड़ दिया तो सामना तो बहुत अच्छा कर लिया उस समय, उसके बाद उसकी अवस्था अप एंड डाउन। दीदी क्या करूं, मुझे बहुत याद आती है। मैं क्या करूं, मुझे बहुत याद आती है। कारण जीते हुए तो आपने इतना उनको क्रिटिसाइज और टॉन्ट किया, बाद में क्यों? इस केस से मेरी बुद्धि चली। इसका अर्थ है कि अटैचमेंट का रूप इस प्रकार से भी हो सकता है। तो हमें बहुत बहुत संभल कर अपने आप को ज्ञान के पट्टे पर रखकर अपने पार्ट को प्ले करना है। हम सब बच्चों को, हम सब आत्माएं हैं और आत्मा हरेक की अपनी अपनी है। बेशक हम दो साथी हैं, आत्मा तो अपनी है, आत्मा तो एक नहीं है। उस हाल में मेरी अप्रोच स्वयं के प्रति क्या होनी चाहिए, इसको प्रायः हम लोग कहते हैं कि रोज 5 केले खाओ। 5 केले खाते हैं? कितने केले खा सकते हो? जो 5 केले खा सकते हैं हाथ उठाओ। आधी सब इकट्ठे खाने, इकट्ठे नहीं खा सकते। अब एक खाने तो पड़ेंगे। अब अपने स्टैमिना को बढ़ाइए, 5 केले खाने तो पड़ेंगे। कई कह रहे हैं 5 इकट्ठे नहीं खा सकते। भाई लोग 5 खा लोगे? इसमें भी 50% ही है। चलो सुनो, 5 केले कौन से? ये रोज खाना। अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेला जाना है, अकेले में बैठ के अकेले बाबा को याद करना है। 5 हो गए? अब ये 5 केले रोज खाना, रहना इकट्ठा है लेकिन भाई को अलग से 5 खाने, शेयर नहीं करना, शेयर नहीं करना, इकट्ठे खाने। आपको अलग खाने हैं, बहनों को अलग खाने हैं, ठीक है? ये आपके अंदर मजबूती लाए, क्योंकि हमें अपनी तैयारी करनी है ना, अपनी यात्रा की भी तो तैयारी करनी है ना। वापस जा रहे हैं ना, वापस चलेगा हमारा साथी हमारे साथ? वे तुम जाती हो जाओ, मैं क्यों जाऊं? ऐसे ना, साथ तो नहीं जाएंगे ना। इसलिए इस बात पर हमको ध्यान दें। ओके, अब मैं आपके साथ लेती हूं जो आज का विषय दिया गया। आदरणीय दादी एक कुशल प्रशासिका। ठीक है, दादी जी को हमने बचपन से देखा है और दादी एक बहुत ही बढ़िया A1 टीचर थी। दादी के सामने तो बाबा भी थे, मम्मा भी थी और बड़ी बड़ी दादियां भी थी, लेकिन दादी जी का अपना ही रुतबा था। एक क्लास टीचर पढ़ने में और पढ़ाने में, बाबा को पूरा फॉलो करती थी। कैसे करती थी? ग्रूमिंग बाबा ने जैसे की उनकी, बाल्यकाल से जब से दादी जी का जन्म हुआ, अलौकिक जन्म, दादी बाबा के इर्द गिर्द सदा रहती थी। आप देखेंगे मेजॉरिटी फोटोज में दादी बाबा के साथ दिखाई देती है। तो बाबा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो दादी ऑब्जर्व करती थी, देखती थी। तब दादी ऑब्जर्व करते करते दादी को टाइटल मिल गया मुन्नी मम्मी। मुन्नी मम्मी माना जैसे मम्मा थी तो 75% मम्मा की क्वालिफिकेशंस दादी में दिखनी शुरू हो गई। बाबा जहां जाते थे दादी को अपने साथ ले आते थे। ड्रामा में ऐसी नूंद थी जो दादी की ऑटोमैटिक नेचुरल रूप में यह ग्रूमिंग होती रही। जब प्यारी मम्मा ने देह का त्याग किया तब बाबा ने दादी और दीदी दोनों को निमित्त बनाया। दादी बॉम्बे, बेंगलोर, महाराष्ट्र ये साइड देखती थी और दीदी दिल्ली, पंजाब, यूपी आदि ये साइड देखती थी। तो दादी जी अपने जीवन काल में बाबा की सब बातों को अप्लाई करते हुए बहुत बहुत, क्यों बाबा का इतना प्यार और विश्वास था? क्योंकि दादी के अंदर पवित्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। आज का ये टॉपिक नहीं है, नहीं तो ये विषय भी मैं आपके सामने रख सकती हूं दादी जी के बारे में, कैसे दादी के अंदर पवित्रता कूट कूट के भरी हुई थी। जहां पवित्रता होती है वहां स्वच्छता होती है, निर्मलता होती है, निर्माण भाव होता है, पारदर्शिता होती है, अनेक अनेक गुण केवल एक पवित्रता की गहराई से धारणा करने पर हमारे जीवन में आ जाते हैं। अब जब बाबा ने अव्यक्त होना था। तो आपको एक बात मैं ये बताना चाहूंगी कि कभी भी बाबा दादी को मधुबन में नहीं रखते थे। बाबा कहते थे लायक बच्चे फील्ड में होते हैं, मैदान में होते हैं। दादी अपना अनुभव सुनाया करते थे, एक दिन एक्स्ट्रा भी अगर मैं बाबा को कहती थी, बाबा पार्टी को भेजने के बाद मैं एक दिन रहूं, बाबा नहीं रहने देते थे। बाबा सदा कहते थे कि बच्ची रिफ्रेश हुए, अब जाके वर्षा करो। आप सेवाधारी हो, आपका क्षेत्र सेवा का मैदान। मधुबन तो घर है। तो दादी कभी न रहने वाली 1969 जनवरी में बाबा ने, दादी जी आए थे पार्टी लेकर, तो बाबा ने दादी जी को रोक लिया। तो बात चल रही थी कि बाबा ने दादी को रोक लिया, कहा बच्ची क्या तुम 15 दिन रुक सकती हो? दादी ने कहा हाँ बाबा रुक जाऊंगी। कि दादी एवर रेडी आत्मा थी, आज्ञाकारी आत्मा थी। बाबा ने कहा और दादी ने किया, तो बाबा के पास वो दादी रुक गए। तो बाबा ने एक दिन पूछा कि अगर ये ब्रह्मा भी चला जाए तो क्या तुम यज्ञ संभाल सकती हो? तो दादी ने कहा आप सिखाएंगे मैं संभाल लूंगी। ये जैसे कि दादी ने तो एक आज्ञाकारिता के हिसाब से बोला, परंतु वो जैसे कि साकार हो गया। आप सब जानते हैं लास्ट मिनट जब बाबा अव्यक्त हुए हैं तो बाबा का हाथ दादी जी के हाथ में था और बाबा ने अपनी सारी शक्तियां दादी जी को विल कर दी, हाथ में हाथ देके सारा शक्तियों से भरपूर कर दिया। वह दिन था 21 जनवरी का, जब बाबा की मुरली चली और बाबा ने ऑफिशियली उस मुरली में दादी जी को और दीदी जी को यज्ञ संभालने के निमित्त बनाया। तो क्या खुशकिस्मती दादी जी की है कि भगवान खुद अपॉइंट करे, भगवान खुद अपॉइंट करे। अब आप सब जानते हैं हम बहनें तो भाई बाबा के द्वारा पली हुई हैं, बाबा के ज्ञान से पली हुई हैं, और दादियां भी बाबा के ज्ञान से ही पली हुई हैं। हम लोगों को फिर भी थोड़ी बहुत बाहर की दुनिया की एजुकेशन है, दादियों को तो वो भी नहीं थी। परंतु दादी ने कैसे निभाया, एक कुशल प्रशासिका के रूप से दादी का जो रोल था उसमें नंबर 1 आदरणीय दादी निमित्त भाव। दादी कभी नहीं समझती थी कि मैं चीफ हूं। दादी सदा कहती थी बाबा कराता है। बाबा कराता है। और ये कारण था कि बाबा दादी जी के माध्यम से सारा कार्य किया करते थे। ये कम बात नहीं है। स्वयं को बाबा पर समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और नतीजा ये होता है, जब एक कुशल प्रशासक स्वयं को निमित्त समझता है तो मालिक के गुण उसके द्वारा कार्य करते हैं। तो बाबा के गुण दादी जी के द्वारा कार्य करते थे। ये कुशल प्रशासिका की पहली दादी की विशेषता। दूसरी बात, दादी जी बहुत 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 बाबा के परिवार को अपना परिवार समझती थी। जो आज हम लोग प्रशासन में और प्रबंधन में फैमिली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया में, दादी जी ने शुरू दिन से बाबा के हर बच्चे को अपना समझा। अपनत्व की भासना देना ये एक कुशल प्रशासक की निशानी है। नेतृत्व में, प्रशासन में, यदि प्रशासक अपने लोगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो वो प्रशासन नहीं कर सकता। इसका एक प्रमाण है। प्रमाण ये है कि दादी ने हम सबकी इतनी प्रेम से पालना की। जो दादी सीटी बजाती थी, ताली बजाती थी और हम हाजिर हो जाते थे, ये उसका प्रमाण है। दूसरी बात, आप में से पता नहीं कितनों को पता या नहीं, दादी लोकप्रिय भी थी, लोग पसंद भी थी और लोगों से मिलना जुलना भी चाहती थी। दादी कॉटेज में होते थे, दादी के सारे पर्दे बंद होते थे। दादी देखती थी अभी कोई नहीं है, उठती थी, पर्दे खोल देती थी और पर्दे खोल कर जो लोग बाहर खड़े होते थे उनको बुला लेती थी, आ जाओ आ जाओ। ये निशानी है लोकप्रियता की। और आपको बताऊं, बाबा के यज्ञ में सेवा कराना, एक दिन ऐसी दादी उठे और बाहर माताएं कुछ खड़ी थी, माताएं खड़ी थी, दादी ने हाथ से बुलाया, आ जाओ आ जाओ। वो सब आ गईं खुशी खुशी और देखती रही दादी को। तो दादी ने कहा, कुछ यज्ञ में कुछ देना है? तो माताएं बोली, हाँ फटाफट अपनी ये पोटली, तो उनकी साड़ी होती है, साड़ी की पोटली में जो उन्होंने बांध रखा था वो निकाल के दादी को दिया। गरीब निवास, बाप कैसे है और कैसे माताओं का, गरीबों का सफल कराना है, ये दादी के अंदर एक बहुत जबरदस्त कला थी। जिस कारण दादी को सब अपना समझते थे। ये एक प्रशासक की बहुत अहम निशानी होती है कि सब कोई उसे अपना समझें। ये इसके हैं, ये इसके हैं, ये उसके हैं, नहीं। लेकिन जैसे बाबा के लिए हम सब कहते हैं कि हमारे हैं, ऐसे दादी के लिए हमारी है। तीसरी बात, दादी बहुत लवफुल थी, लेकिन लवफुल के साथ दादी लॉफुल भी थी। लव और लॉ दोनों का बैलेंस रखती थी, क्योंकि अगर आप केवल लफुल रहेंगे तो आपकी बात कोई स्वीकार नहीं करेगा, आपको सहज समझ लेंगे। और अगर आप केवल लॉफुल रहेंगे तो कोई आपके समीप नहीं आएगा। दादी ने दोनों बातों का बैलेंस अपने लाइफ में बहुत अच्छी रीत से बना करके रखा था। दादी के कर्मातीत होने से कुछ दिन पूर्व दादी के पास में बैठी थी और ओआरसी में नई मैं गई थी। मैंने दादी से पूछा, दादी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चाहिए, लव या लॉ या दोनों का बैलेंस? आप जानते हैं दादी ने क्या बोला? वह दादी जिसको मैंने बहुत जबरदस्त लफुल और लॉफुल के बैलेंस में देखा था, कर्मातीत होने से पूर्व कहती है, ओनली लव, ओनली लव, यानी प्रेम से आप जब लोगों का दिल जीतते हैं तो आपको प्रशासन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, नेचुरल नेचर हो जाती है। सत्युग में कोई लव और लॉ का बैलेंस नहीं होगा, वहां के प्रशासन की विधि लव होगी, ट्रूथ होगी, ऑनेस्टी होगी। ये चीज दादी के अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। एक कुशल प्रशासक वह होता है जो दूसरों को अप्रिशिएट करे और मोटिवेट करे। आपकी टीम जिसके साथ आप कार्य कर रहे हैं, अगर आप अपनी टीम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो टीम डीमोटिवेट हो जाती है। आपके साथी उनको थपकी देना आवश्यक होता है। मैं तो छोटी बच्ची के रूप से थी, लेकिन दादी ने मुझे जो मोटिवेट किया, अगर मैं सुनाऊं तो आप कहेंगे अपनी महिमा कर रही हैं। नहीं, दादी ने जबरदस्त मोटिवेशन दिया। मुझे एक स्थान पर पहले भेजा, पहली अपॉइंटमेंट, जहां कुछ समस्या थी। और ये मेरा भाग्य रहा है कि दादी मुझे एम देकर, लक्ष्य देकर, जहां थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती थी और उसको मैं हैंडल कर सकती थी, दादी गाइडेंस देकर भेजते थे। पहले अपॉइंटमेंट पर मेरा मन नहीं था, दादी ने पत्र लिखा, जबरदस्त मोटिवेटिंग पत्र था। आशा, प्रजा तो सब बनाते हैं, राजा बनाना कोई कोई का काम होता है, तुमको राजाएं बनाने हैं। आप बताइए, ऐसा पत्र पाकर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पीछे रह जाए? जी जान से मेहनत करेगा, जी जान से। ये दादी की कला थी। दादी के प्रशासनिक काल में एक सिंपल इलेक्ट्रिशियन दादी उस पर विश्वास रखती थी और ये कुशल प्रशासक की निशानी है। विश्वास रखती थी कि दादी को फेथ है। हमारे ताराचंद भाई एक सिंपल इलेक्ट्रिशियन थे, दिल्ली पांडव भवन के थे, लेकिन अनुभव से ऐसे बन गए जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनसे कंसल्टेशन लेते थे। ये दादी की प्रशासनिक कला है कि जिसके अंदर दादी जो गुण देखती थी उस गुण से उस व्यक्ति को उभार देती थी। ये एक कुशल प्रशासक के अंदर पारखी बुद्धि, परखने की शक्ति चाहिए जो दादी के अंदर भरपूर रूप से थी। राखी पर, और आप सब जानते हैं, पुराने बैठे हैं, शुरू से मधुबन में वीआईपीज का जो आना जाना हुआ, चाहे सारे प्रेसिडेंट्स आए, वाइस प्रेसिडेंट्स आए, प्राइम मिनिस्टर आए, नरसिम्हा राव जी आए, राजीव गांधी जी आए, सोनिया जी आए, आडवाणी जी आए, वाजपेयी जी आए, वेंकट रमन जी आए, के आर नारायणन आए, या उसके बाद अपने ज्ञानी जैल सिंह जी आए, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी आए, सब दिल्ली से आते रहे। और इस आत्मा को ये सौभाग्य मिलता रहा है ऐसी आत्माओं को बाबा के घर विजिट कराने का, बाबा से वरदान लेने का। राखी पर जब मैं लिस्ट बना के दादी को भेजती थी तो दादी कहते थे, तुम्हारा क्या उनके साथ वार्तालाप हुआ वो लिखो। लिखती थी। जब बहुत परिवार बढ़ गया तो एक दिन मैंने क्या किया, एक बार, एक ही बार किया, सिर्फ चुप करके लिस्ट लिख दी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे करके पूरी लिस्ट लिख के फैक्स से भेज दी। दादी का फोन आया, आशा तुमने कैसा समाचार भेजा है, ऐसा समाचार भेजा, कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा, दादी सॉरी, मैं लिख के भेज। उसी दिन बैठ के मैंने इतना लंबा समाचार भेजा, दादी उससे संतुष्ट होती थी। कुशल प्रशासक अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की क्या सेवा हो रही है उसकी पूरी जानकारी रखता है। आप दादी जी से पूछ सकते थे धनिए का रेट क्या है और बड़ी मशीन का रेट क्या है। ये दादी की कला थी। प्रशासक को अगर अपने घर का ये पता ना हो तो कहीं ना कहीं वो फॉल्टर करेगा, लेकिन दादी ने अपनी इन सब बातों को बहुत पक्का किया था। सवेरे सवेरे भोली दादी आते थे, घर में क्या बनना है दादी को बताते थे। मैं सोचती थी कभी कभी, मैं दादी के पास सवेरे और रात को तो होती ही थी, हमेशा जाते थे, गीता पाठशाला दादी की होती थी, तो मैं कहती थी इतनी बड़ी दादी, इतनी बड़ी दादी, और उससे क्या पूछ रहे हैं, आज टोली क्या बांटनी है, आज खाना क्या बनना है, ये तो ये लोग खुद भी कर सकते हैं ना। नहीं, हमारा फैमिली टाइप एडमिनिस्ट्रेशन है। बाबा के बच्चों को क्या पसंद है, दादी जैसा ग्रुप आता था वैसा मेनू बनवाती थी ताकि बाबा के सब बच्चे संतुष्ट हों, ये दादी की। प्रशासन में कहीं झुकना पड़ता है और कहीं खड़े रहना पड़ता है। दादी फियरलेस थी और दादी झुकना भी खूब अच्छी तरह जानती थी। एक बार पांडव भवन में यीशु दादी के ऑफिस के आगे दादी के साथ में खड़ी थी और सामने से गेट से एक गाड़ी आई, जीप, जीप में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था, जो गेटमैन था उसने वो गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक दी, उसको बहुत गुस्सा आया। वो शायद एसडीएम की थी या किसकी थी, गवर्नमेंट ऑफिसर की गाड़ी। और हम दोनों देख रहे हैं खड़े होके, थोड़ी सी आर्गुमेंट चल रही है। ऑफिसर बहुत नाराज हो रहे थे। दादी चल करके गए वहां और ऐसे हाथ जोड़ के बोले कि इसके बिहाफ पर मैं आपसे माफी मांगती हूं। देखने वाला सीन था जब मैंने उस भाई को बोला, भाई यू नो ये कौन है? ये इस संस्था की चीफ है। वो दादी के पांव गिर पड़ा कि इतनी बड़ी चीफ और एक गेटमैन के कारण से मुझसे क्षमा मांग रही है। ये दादी की एक कुशल प्रशासक के रूप से कला थी, किसी भी बड़ी बात को कैसे तुरंत निर्माण बन करके खत्म कर देना, झुक जाना और बात को समाप्त कर देना। झुकना, निमित्त, निर्माण। अब इसका दूसरा पहलू मैं बताती हूं। लोग सोचते हैं बहुत बड़ी संस्था है, इसके पास बहुत पैसा है, इनके पास पता नहीं कहां से, अमेरिका से कहां से पैसा आता है। दादी जी से कोई मिनिस्टर, नाम नहीं मैं सुनाऊंगी, कोई मिनिस्टर आए और बोले, दादी इलेक्शंस हैं, आपकी इतनी बड़ी संस्था है, हमें इतना पैसा आपकी ओर से भी चाहिए। आप जानते हैं दादी का रूप क्या हो गया? दादी बोले, ये कौन सा स्थान है? प्रभु स्थली है, ईश्वर का स्थान है, यहां दिया जाता है या लिया जाता है? वो मिनिस्टर चुप करके चला गया। इसको कहते निर्भयता से। ये कोई वो स्थान तो नहीं जहां पैसा वृक्षों पे लगा है? भाई बहनों के बूंद बूंद से एकत्र होता है और उसको दादी ऐसे दे दे, संभव। जहां दादी झुकना जानती थी वहां दादी निर्भय होना भी जानती थी और दादी उसको फेस करती थी। एक कुशल प्रशासक, उसकी एक कला ये होती है कि जो उसके साथी हैं उसके अंदर जो गुण हैं उनको उबारे, निकाले, प्रत्यक्ष कराए। बेहद की बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए, त्रिकालदर्शी बुद्धि चाहिए, दूरदर्शी बुद्धि चाहिए। ये सब बातें अपनी मीठी दादी के अंदर थी। मैं आपको एक घटना सुनाऊंगी कैसे दादी चैलेंज देकर खुद भी चैलेंजेस का सामना करती थी और वुड बी में भी चैलेंजेस दे करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करती थी। जब दिल्ली में ओआरसी बना, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, आप जानते हैं खेत ही खेत थे, आज भी खेत हैं, थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ी है। उन दिनों तो कोई पॉपुलेशन नहीं थी, कोई इर्द गिर्द कॉलोनीज नहीं थी, कोई इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, कोई सेंटर्स भी नहीं थे, दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर। और आप जानते हैं दादी क्या कह के गई? दादी जाते जाते कह के गई कि आशा, एक दिन भी ये रिट्रीट सेंटर खाली नहीं रहना चाहिए। उस समय मैं अवाक रह गई। मैंने कहा दादी ने क्या समझा है, किसको ज्ञान दूं? खेत ही खेत है, गांव है, गांव भी कितने किलोमीटर की दूरी पर है। दादी ने कहा एक दिन भी ये खाली ना रहे। बहुत जबरदस्त चैलेंज दादी ने छोड़ा। और यही चैलेंज, यही दादी के शब्द आज तक कानों में गूंजते रहते हैं कि दादी ने कहा है रिट्रीट सेंटर एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। यह हमारे लिए इतना मोटिवेटिंग फैक्टर है जो मैं आपको बता नहीं सकती। इतना बड़ा स्थान खाली रहे ऐसा नहीं हो सकता। दादी जी वह कला जानती थी जहां संसार के बड़े से बड़े बुद्धिमान ब्रेन अपने पास आदरणीय जगदीश भाई, डॉक्टर माथुर साइंटिस्ट, रमेश भाई, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई, अन्य भी अनेक जो रचनात्मक कार्य में तल्लीन विश्व के बेस्ट ब्रेन्स, जब मीटिंग्स होती थी हम देखते थे लोग कैसे प्लान्स अपने देते हैं, लेकिन दादी आध्यात्मिकता वैल्यूज उसको सामने रखकर सबको एक मुट्ठी में कर लेती थी। और सब बड़े बड़े जगदीश भाई, भाई साहब जो भी थे, सब कहते दादी जैसे आप कहो, जैसे आप कहो। ये विशेषता एक कुशल प्रशासक जो दादी में हमने देखी। ऐसी मीठी दादी, अगर आप गौर करेंगे, जब बाबा साकार में थे तो हमारे 100 सेंटर भी नहीं थे। 100 सेंटर भी बहुत ज्यादा संख्या है, 100 सेंटर भी नहीं थे। और जब दादी अव्यक्त हुई है तो कितने सारे कॉन्टिनेंट्स में, यूनाइटेड नेशंस के हम सदस्य, 137 देशों में सेंटर और 18,000 से अधिक सेंटर अपने देश में। आप ये से अंदाज लगा सकते हैं वो प्रशासिका क्या रही होगी। ये है दादी जी का प्रशासन। और कैसे दादी ने जोन्स बनाए, कैसे दादी ने सेंटर्स बनाए, कैसे दादी ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए, स्ट्रक्चर बनाया, मर्यादाएं बनाई, इससे बड़ा प्रमाण दादी जी एक कुशल प्रशासिका थी क्या हो सकता है, जो आज जो भी बाबा के घर में आता है क्या कहता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा। ये है दादी जी की प्रशासिका का प्रमाण। अच्छी तरह ताली बजाइए, ये गौरव का विषय है। ये सच में हम सब के लिए गौरव का विषय। दादी निराधार थी, सबका सुनती थी, सबका सुनती थी, सुनकर जो कहना होता था कह देती थी, मन सदा निर्मल रखती थी। आप दोबारा दादी के सामने जाएंगे उसको वो बात याद नहीं होगी। वो फॉर्मूला फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल जाओ, दादी इसकी प्रतिमा थी। दादी को याद भी नहीं रहता था कि इसने ऐसी भूल की थी। अरे वो तो हो गई ना, फिनिश्ड, आगे चलो। ये दादी की विशेषता विरले लोगों में पाई जाती है। इसलिए बाबा ने दादी को अपना राइट हैंड बनाया। और आपने अगर गौर किया होगा, दादी हमेशा बहनों को आगे रखती रही है, विमेन लीडरशिप। बाबा ने इसका बीज बोया, बाबा ने कलश माताओं बहनों को दिया और दादी ने उसे आगे कंटिन्यू रखा। दादी हमेशा हमें कहते थे क्यों। एक बार कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं बात कर रही हूं 74-75 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस समय जगदीश भाई या कोई भी बड़े भाई नहीं थे वहां पर, दादी जी थे, बड़ा मेला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो दादी ने कहा आशा प्रेस रिलीज तुम बनाओ। तो मैंने कहा दादी मैंने कभी नहीं बनाई है। तो दादी बोले कोई तो दिन होगा जिस दिन तुम पहली बार बनाओगी प्रेस रिलीज, वो दिन समझो आज का दिन और प्रेस रिलीज बनाओ। और दादी ने बनवाई और ये एक विश्वास उत्पन्न कर दिया कि ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके लिए हम बहने कहें कि ये कैसे होगा। बाबा साथी है, बाबा कराएगा। दादी ने मुझे उस समय कहा तुम्हें पता है यज्ञ में पहले लिटरेचर कौन लिखता था, मैं ही लिखती थी। बड़े दादी लिटरेचर लिखते थे शुरू शुरू हैदराबाद सिंध कराची में, दादी लिटरेचर लिखते थे। तो दादी ने कहा तुम्हें पता है, अपना मिसाल दिया, तुम्हें पता है पहले लिटरेचर कौन लिखता था, मैं ही लिखती थी, तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो। जी दादी, ऐसी मीठी दादी को जितनी बातें दादी की करते जाएं उतनी ही कम है। मेरे पास तो हजारों बातें हैं क्योंकि मेरे लाइफ में टोटल पालना दादियों की ही रही और उसमें दादी प्रकाशमणि का जबरदस्त पालना का रूप रहा है जिसको मैं कदापि भुलाने की तो बात ही नहीं, लेकिन उसे यूज न करूं उन शिक्षाओं को मुझे लगता है ये भी बड़ों का डिसरिगार्ड होगा। सदा दादी की वे बातें याद आती हैं। जब कोई बात आती है तो दादी की कही हुई बात याद आ जाती है और जो मामला होता है सामने वो सहज सुलझ जाता है। ऐसा नहीं कि बाबा को याद नहीं करते, नहीं, साकार रूप में बाबा को भी देखा, मम्मा को भी देखा, लेकिन अधिक समझ जिस समय रही वो दादी जी के प्रशासन काल में रही। और इसलिए मैं दादी को बहुत बहुत क्या कहूँ, श्रद्धा सुमन कहो तो वो शोभा नहीं देते, लेकिन बहुत बहुत प्यार से रिस्पेक्टफुली दादी की बातों को जीवन में लागू करने का संकल्प रिवाइज करती हूँ। ओम शांति। आप सबको देखकर दादी कितने खुश होते पता है, दादी डांस करते थे आप लोगों को देख के, और अगर साकार में बाबा होता ना, आज इतने युगलों को देख के बाबा बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। अभी भी अव्यक्त रूप से तो ऊपर से देख ही रहे ना बाबा।
हजारों क्या करोड़ों में ये हीरा जग मगाएगा, हजारों क्या करोड़ों में ये हीरा जग मगाएगा, रगों में रामा रम चुकी कर जुदा ना कोई पाएगा, इस भूमि का भूगोल हो अतीत का इतिहास हो। तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। संसार दादी आपको याद कर रहा, आपका ये संसार दादी आपको याद कर रहा। स्नेह संकल्प श्रद्धा के अर्पित सुमन है कर रहा, सदा अमर प्रकाशमणि तू पास थी तू पास हो। तुम तो तब भी साथ थी, तुम तो अब भी साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो। प्रकाश संभ बन के दादी, प्रकाश संभ बन के दादी, तेरे ही प्रकाश हो। तुम तो तब भी साथ थी, साथ हो, तुम तो अब भी साथ हो।